नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जो पराभौतिक परामानसिक रचना है उनकी कोई सीमा नहीं है, किसी भी तरह से वो बदल सकती है, उनमें कोई नियम भी नहीं है। लेकिन उनमें से कोई एक भाग है, छोटा सा भाग उनका, जो कि नियमबद्ध है, और वही हमें इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देता है, इंद्रियों के माध्यम से जिसका ज्ञान होता है, उसी को हम सगुण अस्तित्व कहते हैं। और जिसका ज्ञान नहीं हो सकता, जिन पराभौतिक परामानसिक रचनाओं का, उनको हम निर्गुण अस्तित्व कहते हैं। इसको हम प्रकट और अप्रकट भी कह सकते हैं, या व्यक्त और अव्यक्त भी कह सकते हैं। जो अस्तित्व का वो भाग जो नाद रचनाओं के रूप में जिनका अनुभव होता है, वो व्यक्त भाग है, जिनका अनुभव नहीं हो सकता क्योंकि वो नियमबद्ध नहीं है, किसी क्रम में नहीं है वो रचनाएँ, उसको अव्यक्त कह सकते हैं क्योंकि उसका चित्त में कोई संस्कार नहीं बनता, उसकी कोई स्मृति नहीं बनती, उसका कुछ ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उसको अव्यक्त कह सकते हैं या अप्रकट कह सकते हैं। सभी पराभौतिक रचनाओं में प्रकट होने की संभावना छुपी होती है। इसी तरह से प्रकृति का उद्भव होता है, इसी तरह से कृति होती है। प्रकृति का अर्थ है वो जो कृतियाँ बना रही है, जो सृजन कर रही है प्रकृति। जब पराभौतिक परामानसिक रचनाएं जो किसी क्रम में नहीं है, किसी नियम में नहीं है, उनमें यदि संभावना होती है कुछ नियम में बंधने की या किसी क्रम में बंधने की, नाद रचनाओं में बदलने की, उसको हम सृजन कहते हैं। इसी तरह से सारी वस्तुओं का निर्माण होता है जब वो अप्रकट से प्रकट में आती है। तो ये भी एक प्राकृतिक घटना है क्योंकि सारी संभावना है, तो ऐसी भी रचनाएं हैं जिनमें कि ये अप्रकट से प्रकट में बदलने की संभावना भी है, क्योंकि अस्तित्व में सभी संभावनाएं हैं। तो उनमें ऐसी भी रचनाओं की संभावना है जो कि अप्रकट से प्रकट में बदल सकती है। इसी को हम सृजन के रूप में देखते हैं। प्रकृति यही कर रही है, जो प्राकृतिक शक्ति है, हम उसको शक्ति का भी नाम देते हैं, वो यही कर रही है, वो अप्रकट को प्रकट में बदल रही है, जिसका अनुभव नहीं हो सकता उसको अनुभव में बदल रही है, यही सृजन की क्रिया है। उदाहरण के लिए आप मान लें कि आपके पास तीन रंग की गोटियां हैं, गोटियां जो जैसे कि हम खेल में उपयोग करते हैं, केसरी, सफ़ेद और हरे रंग की गोटियां हैं। यदि आप उसको एक डब्बे में भर के हिला दें और फर्श पर गिरा दें, तो आपको इधर उधर बिखरी हुई गोटियां मिलेंगी, आपको कोई वहां पर खास अनुभव नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप उनको जमा दें इस तरह से कि सबसे ऊपर केसरी गोटियां रहें, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की, तो आपको भारत का झंडा दिखाई देगा और ये एक अनुभव होगा। जो अप्रकट था वो अप्रकट हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने उसे जो क्रम में नहीं था उसको एक क्रम में बांध दिया है, उसको एक नियम में बांध दिया है, आपने सृजन कर दिया है। ऐसे आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कभी कभी कि शून्य से सारी प्रकृति का निर्माण हुआ है, शून्यता से सृजन हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो रचनाएं जो नियम में बंध जाती हैं, वो भी माया है, वो भी उतनी ही अवास्तविक है जितनी कि वो रचनाएं जो किसी क्रम में नहीं है, जो किसी नियम में नहीं है। किसी भी वस्तु की कभी कृति नहीं हुई, किसी भी चीज़ का कभी सृजन नहीं हुआ, वो आभास मात्र है, वो संभावना मात्र है। सारी की सारी प्रकृति माया है, अवास्तविक है, मिथ्या है। यदि हम इन रचनाओं की अवधारणा लेते हैं इस तरह से, तो ये सब समझना बहुत आसान हो जाता है। आपको रचनाओं का जो है कभी अनुभव नहीं होगा, आपको सिर्फ अनुभूतियों का अनुभव होगा, इसीलिए ये ज्ञान के परे हैं। इसको अज्ञान भी नहीं कह सकते, लेकिन ये अनुमान है। इसको सिद्ध करना बहुत आसान है, इसका प्रमाण ढूंढना, प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढना बहुत आसान है। आपको बस अनुभव पर एक दृष्टि डालना है, आपके जो भी मन में विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, वो सब निकाल के फेंक देना है और कोरा अनुभव, उसका हमें अध्ययन करना है, उसकी जांच करनी है। आपको कभी पराभौतिक परामानसिक रचनाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि वो एक अवधारणा मात्र है, काल्पनिक शब्द हैं, लेकिन आपको उनके प्रभाव देखने को मिलेंगे। उन्हीं प्रभावों से अनुमान लगाया जा सकता है उन रचनाओं का। तो आपको नियमबद्ध रचनाएं मिलेंगी क्योंकि जो नियमबद्ध नहीं है उनका कोई अनुभव नहीं होगा, वो स्मृति में नहीं जाएंगी, वो गोटियों को फर्श पर फेंक देने के बराबर है। यदि आपको अनुभव होता है तो उसका सृजन हो चुका है, किसी न किसी नियम में वो बंध चुकी हैं वो रचनाएं, और उसका अनुभव एक वस्तु के रूप में होगा। सारा जगत का अनुभव ऐसे ही हो रहा है हमें। इससे एक बड़े प्रश्न का हल निकल जाता है कि सारा जगत नियमबद्ध क्यों है। तो बड़ा आसान हो जाता है अब इसका जवाब देना, क्योंकि यदि वो नियमबद्ध नहीं होता तो उसका अनुभव ही नहीं होता। जो रचनाएं नियमबद्ध हो गई हैं उन्हीं का हमें अनुभव होता है, वही बुद्धि के अंदर है, चित्त उसी का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसीलिए वही दिखाई देती हैं, नियमबद्ध रचनाएं ही दिखाई देती हैं। तो ये आवश्यक है कि सारा जगत नियम में बंधा हो, जो नियम में नहीं बंधा है उसका जगत के रूप में अनुभव नहीं होता। आप एक कदम भी नियमों से दूर चले जाएं, जरा सा अनियमित हो जाए यदि वो रचना है, तो उनका अनुभव स्वप्न जैसा हो जाता है। इसका कोई खास क्रम नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन बस आप कगार पे है एकदम उसका विनाश करने की। यदि वो पूरी तरह से उसका अनुभव बंद हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पे कोई भी क्रम नहीं बचा, कोई संभावना नहीं बची उसका उन रचनाओं का ज्ञान होने की। ऐसे ही आपको कई बड़े प्रश्नों का जवाब मिलेगा यदि आप इस तरीके से अनुभव का अध्ययन करते हैं। मैं मानता हूँ थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कठिन है, माया कठिन है, माया काफ़ी जटिल वस्तु है। उसका अध्ययन आप देख ही रहे हैं, विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है लेकिन उसका कुछ और छोर नहीं दिखाई देता। माया का कुछ ना उसकी उसका आरंभ है ना उसका अंत है, उसकी गहनता का कोई अंत नहीं है, कितने भी गहरे जा सकती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि रचनाओं का कोई अंत नहीं है, हर तरह की संभावना वहाँ है, हर तरह की रचनाएं होने की, रचनाएं आपस में मिलती रहती हैं और नई रचनाएं बनाती जाती हैं। इस तरह से वो अनंत है, इस तरह से उसकी जटिलता अनंत है, हो सकती है। आपको केवल एक रचना में दूसरी रचना जोड़ते जाना है और वो इतनी जटिल हो जाती है कि कभी कभी बुद्धि के परे हो जाती है। यदि वो उसमें उसके नियम इतने जटिल हो जाते हैं कि वो भी बुद्धि के परे हो जाते हैं, बुद्धि की भी सीमा है। यदि सरल नियम है तो बहुत आसान है उसका अनुभव करना, यदि नियम बहुत कठिन हो जाते हैं तो वो अनुभव के बाहर हो जाता है। हम देखेंगे कि जब दो या तीन लोग हैं तो वो कैसा व्यवहार करेंगे, उसका ज्ञान जरा सा सरल है जानना। एक ऐसा कहेगा तो दूसरा वैसा कहेगा, या ये यहाँ जाएगा तो वो वहाँ जाएगा। यदि आप तीन चार लोग और जोड़ देते हैं उस समूह में तो वो सारा समूह कैसा व्यवहार करेगा आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। वो इतना उसके नियम इतने जटिल हो चुके हैं कि वो बुद्धि के परे हो गए हैं। इसीलिए हम जब ये रचनाएं बहुत बड़ी मात्रा में यदि मिलती हैं हमें तो उनका सांख्यिकी के आधार पर ही अध्ययन कर पाते हैं। एक एक रचना को पकड़ के हम उसका नियम ढूंढना जो है कठिन हो जाता है। सारे समूह का हम अध्ययन कर पाते हैं, उसको सांख्यिकी कहते हैं। तो ये जो जगत है, जो भौतिक जगत है, इसका दो तरीके से अध्ययन हो सकता है। एक तो सारे समूहों का अध्ययन, जो भी रचना है उनके समूह का अध्ययन, जो कि सांख्यिकी में आता है, गणित के माध्यम से होगा, और रचना का स्वयं का अध्ययन जो कि भौतिकी में आता है। ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है इसका विज्ञान, आपको अगर रुचि है तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन भौतिकी में किसी भौतिक पदार्थ का अध्ययन नहीं हो रहा है, भौतिकी में जिसका भी अध्ययन हो रहा है वो रचनाएं हैं, वो पराभौतिक परामानसिक रचना है, वो क्योंकि वो भी दिखती नहीं है। नाद रचनाओं का ही अध्ययन संभव है भौतिकी के अंदर, और यदि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है मात्रा उनकी, करोड़ों करोड़ों में खरबों में पहुँच जाती है, तो केवल सांख्यिकी के माध्यम से ही अध्ययन संभव है। भौतिकी में जो पदार्थ की अवधारणा है वो कि अवधारणा मात्र है, वो कल्पना मात्र है, क्योंकि हम देखेंगे कोई भी वस्तु विभिन्न स्तरों पर बनी होती है, वो तहों में विभाजित है, वो परतों में बनी होती है। कोई भी वस्तु, यदि आप वस्तु कोई भी वस्तु लेंगे, भौतिक वस्तु, उसको आप यदि वो ठोस है तो उसको आप तोड़ेंगे तो आपको कण दिखाई देंगे, उसमें आपको रसायन दिखाई देंगे, द्रव्य दिखाई देंगे, और यदि आप उनको भी तोड़ेंगे तो आपको नियमबद्ध रचनाएं दिखाई देंगी, या तो चौकोर या तो फिर त्रिकोण आकार में ऐसी ईंट की तरह बंधी हुई रचनाएं दिखाई देंगी, और यदि आप उसको भी तोड़ेंगे तो आपको अणु दिखाई देंगे, और जो कि दिखाई नहीं देंगे लेकिन उसका प्रयोगों द्वारा पता करना आसान है, और ये उसको भी तोड़ा जा सकता है और आपको परमाणु दिखाई देंगे, उनको भी तोड़ा जा सकता है और आपको अंत में केवल ऊर्जा दिखाई देगी, केवल ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा क्या है? शुद्ध परिवर्तन है। जितना बड़ा परिवर्तन होता है हम उसको उतनी ऊर्जा का नाम देते हैं। ऊर्जा शब्द बहुत रोचक है। ऊर् का अर्थ होता है हृदय, ज यानी कि पैदा होना, तो हृदय मतलब जो अंदर है, जो सबसे अंदर का स्थान वो हृदय है, और उसमें से जो पैदा होता है वो ऊर्जा है। तो यदि आप पदार्थ के अंदर जाएंगे, उसके हृदय में जाएंगे, तो आपको ऊर्जा दिखाई देगी। ऊर्जा से ही परमाणु, अणु और कण और रसायन और भौतिक वस्तुएं बनती हैं। ऊर्जा क्या है? परिवर्तन मात्र है। किसी चीज़ का परिवर्तन हो रहा है, किसका परिवर्तन हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा, केवल परिवर्तन दिखाई देगा। ये विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण खोज है, और इसी परिवर्तन को मैंने पराभौतिक और परामानसिक रचनाओं का नाम दिया है। केवल इतना फर्क है कि यही रचनाएं मन का भी निर्माण करती है, जो कि भौतिकी भौतिक बाहर है, उस विषय के बाहर है। इसलिए विज्ञान जो है वो जगत तक ही सीमित है, क्योंकि वो वहीं रुक गया है, ऊर्जा पर जाकर रुक गया है। उनके पास ये अवधारणा नहीं है जो कि मैंने आपको अभी दी, उनके पास ये नाद रचनाओं की अवधारणा नहीं है। उनको मालूम है, वैज्ञानिकों को, कि सारे पदार्थ के मूल में, उनके हृदय में एक तरह का परिवर्तन है, नियमबद्ध परिवर्तन है, एक तरह का नाद है, लेकिन वो वहीं अटक गया है किसी कारणवश क्योंकि उसको समझने के लिए एक आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो कि आध्यात्मिक शिष्य के पास होती है। इसलिए अध्यात्म का शिष्य किसी भी वैज्ञानिक से ऊंची स्थिति पर बैठा है, ऊंची जगह पर बैठा है। उसका दायरा जो है, उसकी सीमा जो है, वो बड़ी है विज्ञान से। आध्यात्म का क्षेत्र विज्ञान से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अध्यात्म में वो उन प्रश्नों का उत्तर जानने की योग्यता है जहाँ विज्ञान रुक जाता है। विज्ञान बहुत सीमित है, वो अपनी ही मान्यताओं में उलझ गया है, उसका विकास रुक गया है। अध्यात्म का विकास कभी नहीं रुकता, ज्ञान अनंत है, लेकिन मूल तत्व तो एक ही है, हमेशा आपको एक ही मिलेगा। आप किसी भी दिशा में, किसी भी मार्ग पर चले अध्यात्म के, आपको यही मिलेगा। मैंने इसको थोड़ा सा आज की भाषा में इसका विवरण, इसका व्याख्यान करने का प्रयास किया है, बस इतना फर्क है। आपको यही मूलभूत ज्ञान जो है दूसरे भाषाओं में मिलेगा, दूसरे शब्दों में भी मिल सकता है। कोई उसको शक्ति कहेगा, कोई उसको शिव कहेगा, कोई उसको कुंडलिनी कहेगा, कोई उसको प्राण कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन सारे अनुभव के हृदय में यही रचनाएं हैं, नाद रचनाएं। नाद रचनाओं से ही सारी वस्तुएं बनी है, और एक तरह की परतों में बनी है। ये सिर्फ नाद रचनाओं को एक जगह पर डाल देने से कुछ वस्तु नहीं बनती, उसका एक व्यवस्थित ढांचा है, उसका एक संरचना है जो इन मौलिक सरल रचनाओं से बनी है। तो यही आपको विज्ञान में दिखेगा कि एक के ऊपर एक आपको परतों में इस तरह की संरचनाएं दिखती जाएंगी, और अंत में जो इंद्रियों से दिखाई देता है स्थूल जगत, वो ठोस, वो नियमबद्ध और वो परिवर्तनशील क्रमबद्ध रूप में दिखाई देता है। इसी को लोग यथार्थ मान बैठते हैं, इसी को लोग सत्य मान बैठते हैं, क्योंकि समझ बुद्धि के अंदर है, जो बुद्धि के अंदर है उसको बहुत स्वाभाविक बात है कि लोग सच मान बैठे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें कोई सच नहीं है, उसमें उसका कुछ स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यदि वहाँ अनुभव नहीं होगा, जो कि अनुभवकर्ता द्वारा ही होगा, अनुभव की यही परिभाषा है कि वो जो अनुभवकर्ता को मिल रहा है वो अनुभव है, तो अनुभवकर्ता नहीं होगा तो अनुभव भी नहीं होगा, इसीलिए वो माया मात्र है। वहाँ पर यदि केवल अनुभवकर्ता ही है, अस्तित्व इसी रूप में है, तो कोई अनुभव नहीं है। जो आता है, जो जाता है, वो सत्य नहीं होता। ये अद्वैत का मानदंड है सत्य का। तो भले ही नाद रचनाएं नियमबद्ध हों, भले ही ठोस हों, भले ही उनकी भविष्यवाणी करना संभव हो कि वो कैसे बदलेंगी और कैसे दिखेंगी, वो बताना संभव है क्योंकि नियमबद्ध है। किसी भी तरह की नाद रचनाएं हों, वो सारी माया है, वो सारी आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। तो बड़ी रोचक बात है, बड़ी विचित्र बात है कि ऐसा भी संभव है। इसीलिए इस जगत को बहुत बड़ी कृति कहा गया है, बहुत बड़ी रचना कहा गया है। उस कलाकार को सबसे बड़ा कलाकार कहा गया है जिसने कि जगत का निर्माण किया। तो ये सब उपमा मात्र है, यानी कि हम कभी कभी कह देते हैं कि शिव का एक रूप जो है नटराज, जो कि सबसे बड़ा कलाकार है, उसमें से सारी रचनाएं उत्पन्न होती है, वहाँ से ही सारा जगत पैदा होता है। वो सबसे बड़ा कारीगर है शिव। शिव क्या है, शिव शून्यता मात्र है, शून्यता से कुछ कैसे प्रकट हो सकता है, यह असंभव है। इसीलिए उस कलाकार ने जो भी बनाया है, जिस भी चीज की रचना की है, जो भी जगत जितने भी लोक बनाए हैं, वो सारे स्वप्न मात्र है, सिर्फ विचार मात्र है उसके मन में, ऐसा भी कहा जाता है। और ये सत्य है क्योंकि आभास मात्र है उस रचना का, वो यथार्थ में नहीं है। यथार्थ क्या है? मैं, सिर्फ मैं ही सच हूँ, जो मैं अनुभव करता हूँ, मेरे ही स्वप्न का अनुभव है। कुछ रचनाएं नियमबद्ध हो गई हैं, उससे एक मायावी अनुभव, बड़ा विचित्र, बड़ा अभूतपूर्व अनुभव हमें होता है, और इसी को हम जगत कहते हैं। अभी अभी मैंने कहा कि जो पराभौतिक परामानसिक रचनाएं हैं, उनका कोई अंत नहीं है, अनंत है। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है, संभावना मात्र है, तो वो अनंत हो सकती है। यदि वो सत्य होती तो अनंत नहीं होती, वो संभव नहीं था। यदि वो पदार्थ है, यदि वो ठोस है, तो वो अनंत नहीं हो सकता। यदि वो केवल नाद रचना मात्र है, केवल परिवर्तन मात्र है, शुद्ध परिवर्तन है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, वो अनंत हो सकता है, उनकी मात्राएं अनंत हो सकती है। यदि आपको एक आखिरी नाद रचना मिले, तो आपको एक नई रचना का निर्माण करने के लिए केवल एक काम करना है कि उसमें एक सरल सी नाद रचना जोड़ दें उसमें ले जाके, और आपको नई रचना मिल जाएगी। इसी तरह से आप जोड़ते जाएं तो अनंत रचनाएं बन सकती हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि ये अनंत है नाद रचनाएं, तो हमें केवल कुछ ही रचनाओं का क्यों अनुभव होता है, हमारे अनुभव क्यों सीमित है? इसका सरल सा उत्तर है, क्योंकि इंद्रियां सीमित है। अनुभूति को जन्म देने के लिए इंद्रियों को नाद रचनाओं से प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, यानी कि परस्पर बदलाव, परस्पर परिवर्तन नहीं होंगे। जब इंद्रियां नाद रचनाओं के संपर्क में आती हैं, तो ये परिवर्तन होते हैं। ये इन्हीं परिवर्तन को हम अनुभूति के रूप में अनुभव करते हैं। अनुभव अनुभूतियाँ ही है, तो यदि ये नहीं होगा तो उसका अनुभव भी नहीं होगा। अनुभवों का अनुभव सीमित दिखाई देते हैं मनुष्य रूप में, क्योंकि हम शरीर के माध्यम से अनुभव ले रहे हैं, शरीर यानी कि इंद्रियां, और इंद्रियां सीमित है, इंद्रियों की जो पहुंच है वो सीमित है। तो यदि कोई नाद रचना बहुत धीरे बदल रही है, इतनी धीरे कि उसकी अनुभूति, उसमें ऊर्जा नहीं है इतनी कि अनुभूति भी पैदा कर पाए उसकी, तो वो हमारे अनुभव के बाहर हो जाती है। और यदि वो बहुत तेज बदल रही है नाद रचना, इतनी तेज कि इंद्रियां प्रतिक्रिया करने से पहले ही वो बदल चुकी है, इंद्रियों की प्रतिक्रिया वहां तक पहुंचे उससे पहले ही वो बदल चुकी है, इतनी तेज उसकी गति है, तो वो भी अनुभव के बाहर चली जाती है। उसका जो परिवर्तन जो है, उसको अनुभूति में नहीं बदल पाती, इतना तेज उसका परिवर्तन हो रहा है। तो इंद्रियों की ये एक निचली सीमा है और एक ऊपरी सीमा है। कोई भी इंद्रिय ले लें, आंखों की या कानों की या छूने की, ठंडे गर्म की, सभी की एक निश्चित उसकी पहुंच है जिसमें कि वो काम करती है। इसीलिए जो इंद्रियों के माध्यम से हमें अनुभव होते हैं, वो सीमित होते हैं। आपको इतने ही रंग दिखाई देंगे, आपको इतने ही तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी, इतनी ही आवृत्ति की आवाज़ें आपको सुनाई देगी। कुछ आवृत्ति के नीचे आपको नहीं सुनाई देगा, और कुछ किसी एक विशेष आवृत्ति के ऊपर नहीं सुनाई देगा। जो रंग है वो एक तरह के परिवर्तन मात्र है, और यदि वो परिवर्तन एक आवृत्ति के नीचे हो रहे हैं, नहीं दिखाई देंगे आंखों से। यदि आवृत्ति के ऊपर हो रहे हैं, तो भी नहीं दिखाई देंगे। तो सभी इंद्रियों की सीमा होती है, इसलिए हमें एक सीमित जगत दिखाई देता है। हाँ, हम कुछ कृत्रिम इंद्रियां बना सकते हैं, जिनको कि हम हमारे यंत्र कहते हैं, वैज्ञानिक यंत्र, उपकरण बना सकते हैं, जो कि इंद्रियों से कम या ज़्यादा जिनकी पहुँच हो सकती है। जो नाद रचना नियमबद्ध है, तो ऐसा उपकरण बनाया जा सकता है जो कि उतनी, जिसकी की उतनी पहुँच है, क्योंकि नाद रचना है परिवर्तन मात्र है, तो ऐसा उपकरण बनाया जा सकता है कि जो वो परिवर्तन को अंकित कर सके। विज्ञान का जो दृश्य है, वो इंद्रियों के दृश्य से बड़ा है। एक वैज्ञानिक वो देख सकता है जो इंद्रियां नहीं देख सकती। इंद्रियां बहुत सीमित है, और यदि आप उपकरणों का प्रयोग नहीं करें, तो जगत का बहुत छोटा सा भाग, जो कि प्रकट जगत है, जो कि व्यक्त जगत है, उसका एक बहुत छोटा सा भाग, उसी का हमें अनुभव होता है। उपकरणों का आप उपयोग करें, तो यंत्रों का उपयोग करें, तो थोड़ा और जगत दिखाई पड़ सकता है। थोड़ा और जगत अनुभव के अंदर आ जाता है। तो जैसे कि दूरबीन से हमें काफ़ी दूर तक का दिखाई दे जाता है, और सूक्ष्म दर्शक यंत्र से हमें बहुत छोटा भी दिखाई दे जाता है, जो कि इंद्रियों के वश में नहीं है उतना देखना, उनके योग्यता के बाहर है, उनकी पहुंच के बाहर है, वो भी दिखाई दे जाता है। तो इन कृत्रिम इंद्रियों के माध्यम से हमारा अनुभव थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है, वही नाद रचनाएं, या तो वो छोटी बड़ी तेजी से बदलती हुई या धीरे बदलती हुई, हमें सिर्फ नाद रचनाएं ही दिखाई देती है, जो कि परिवर्तन मात्र है, नियमबद्ध परिवर्तन। इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है जिसको कि हम सूचना कहते हैं, यानी कि वो परिवर्तन जिसका कुछ अर्थ निकले वो है सूचना। तो जो भी नाद रचना है वो सूचनाबद्ध है, उसका कुछ अर्थ निकलता है, वही नाद रचना हमें दिखाई देती है। सारा जगत सूचना मात्र है, शुद्ध परिवर्तन मात्र है, उसमें कोई पदार्थ नहीं है। जो आपको पंच महाभूत जो बताए गए हैं प्राचीन काल में, या जो तत्व बताए गए हैं विज्ञान में, वो उनका आधार, उनका मूल केवल नाद रचनाएं हैं, एक तरह के नाद है। इसको प्राचीन काल में ब्रह्मनाद भी कहा गया है। ब्रह्मनाद यानी कि अस्तित्व का नाद, अस्तित्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो ब्रह्मनाद है। ब्रह्मनाद से ही सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों कह गए हैं हमारे बड़े बड़े ऋषि और मुनि, ऋषि और ज्ञानी, क्योंकि उन्होंने ऐसा सीधा अनुभव किया। ये अनुभव आपके सामने है, उसके लिए आपको कोई बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ बड़ा उपकरण नहीं चाहिए, आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है जानने के लिए। केवल अपने अनुभव का अध्ययन करें, आपको मिल जाएगा ये मूल सत्य। आपकी बुद्धि ही, आपका चित्त ही सबसे बड़ा उपकरण है। आपको जो भी सत्य जानने के लिए चाहिए पहले से मिला हुआ है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि बिना किसी मान्यताओं के, बिना किसी पूर्वाग्रह के आपको वो देखना है जो आपके सामने है, और सत्य सामने खड़ा है। हाँ, यदि आप थोड़ा बहुत विज्ञान का सहारा लेते हैं तो और आसान हो जाता है, क्योंकि आपके सामने अभी प्रत्यक्ष प्रमाण उपकरणों की सहायता से या गणित की सहायता से मिल जाता है। गणित जो है जगत का बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यान कर सकता है, क्योंकि जगत नियमबद्ध है, गणित नियमों की ही एक भाषा है। जो गणित के समीकरण है वो एक तरह के नियम ही दर्शाते हैं। बड़ा प्रश्न है विज्ञान में कि जगत गणित से क्यों इतना मेल खाता है, गणित में क्यों जगत के नियमों के उत्तर मिलते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि जगत गणित का बना है, जगत सूचना का बना है, जगत संख्याओं का बना है, पदार्थ का नहीं बना। और जब वो रचनाएं आपस में मिलके बड़ी रचनाएं बनाती हैं तो वो नियमों के अनुसार बनती है। यदि नियमों के अनुसार ना बने तो उनका अनुभव ही संभव नहीं है, वो अप्रकट रहती हैं। प्रकट जो रचना है वो हमेशा नियमों के अनुसार बनेंगी, या रचना और नियम एक ही हैं। संरचनाएं या व्यवस्थित रचनाएं और नियम एक ही बात है, इसीलिए गणित के माध्यम से उसको जानना संभव है। यदि कोई रचना नहीं होगी, यदि वो एक नियमबद्ध तरीके से नहीं बदलेगी, तो उसका कोई अनुभव नहीं होगा, वो जगत का भाग नहीं होगी। और यदि वो नियमबद्ध है, नियमों के अनुसार बदलती है, बड़ी रचनाएं छोटी रचनाओं से जब बनती हैं तो नियमों के अनुसार बनती है, तो वो जगत का भाग होगी। और क्योंकि नियम है तो गणित के समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है वो नियम, बहुत आसान है जानना। क्योंकि इंद्रियां सीमित है, हमें एक जगत का सीमित तरह का अनुभव होगा। यदि आप उपकरणों की सहायता से देखने जाएं तो आपको थोड़ा सा और बड़ा अनुभव होगा जगत का, लेकिन वो उपकरणों द्वारा सीमित होगा। उपकरणों का भी, उनकी भी एक सीमा होती है, उनकी भी एक पहुंच होती है, उनका भी दायरा होता है, क्षेत्र, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकते। तो प्रकट है, प्रकट व्यक्त भाग है अस्तित्व का, बहुत सीमित है। मान लीजिए 99.99999% अप्रकट है, अव्यक्त है, बहुत छोटा सा भाग जो है इस अस्तित्व का नियमबद्ध है, वो प्रकट है, इंद्रियों के वश में है, वही दिखाई देता है। जबकि जो संभावित भाग है, जो कि सृष्टि में बदल सकता है, जो कि प्रकट हो सकता है, करीब करीब अनंत है। ये पराभौतिक परामानसिक रचनाओं का बना है। ये अवधारणा काफ़ी काम आती है, जैसा कि आपने देखा। ये रचनाएं ही चित्त हैं। यदि आप सभी जगत की सभी वस्तुओं को मिला दें और सभी लोगों को, सभी ग्रह नक्षत्रों को, सारे ब्रह्मांड को, जो कि भौतिक भाग है ब्रह्मांड का, उसको मिला दें तो एक सागर सा बन जाता है इन रचनाओं का। केवल चित्त है और उसमें जो बदलाव चलते हैं, जो परिवर्तन चलते हैं, वो चित्तवृत्ति है। इसी को मैं विश्व चित्त का नाम दूंगा, यानी कि सारे विश्व का जो चित्त है, सारी की सारी नाद रचनाओं को आप एक जगह मिला दें, एक साथ देखें, तो ये बड़ा सागर आपको दिखाई देगा, एक तरह का अनंत सा। क्योंकि भले ही नाद रचनाएं सीमित हैं, लेकिन उनकी गिनती इतनी अधिक है कि आप गिन नहीं पाएंगे। वो हमारी बुद्धि के लिए करीब करीब अनंत ही है। वो भी जो व्यक्त भाग है, वो भी इतना बड़ा है कि एक आम मनुष्य के लिए वो अनंत ही दिखाई देता है। यदि आप व्यक्त और अव्यक्त दोनों को मिला दें तो वो पूरी तरह से अनंत हो जाता है। उसका और नहीं, छोर नहीं, उसका कुछ, उसका माप नहीं ले पाएंगे आप। वो अनंत है, सनातन है, नित्य है, उसका कभी अंत नहीं होता। समय में अंत नहीं होता और संभावना में भी अंत नहीं होता। ये विश्व चित्त है। एक नया शब्द होगा आपके लिए, आपको पुराना शब्द चाहिए तो उसको ईश्वर भी कहा गया है। लेकिन विश्व चित्त में केवल वस्तुएं या जगत या लोग ही नहीं आते, या भौतिक रचनाएं ही नहीं आती, मानसिक रचनाएं भी हम उसमें ही मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भौतिक और मानसिक में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। केवल इतना है कि जो इंद्रियों द्वारा, शरीर में स्थित इंद्रियों द्वारा जिसकी अनुभूति होती है, हम उसको भौतिक कह देते हैं। जिन नाद रचनाओं की अनुभूति इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती, हम उनको मानसिक कह देते हैं। तो भौतिक और मानसिक रचनाओं में कोई मूलभूत फर्क नहीं है, क्योंकि भौतिक रचनाएं वो हैं जिनकी अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से हो रही है आपके शरीर में स्थित, और मानसिक रचनाएं वो हैं जिनकी अनुभूति बिना किसी इंद्र के हो रही है, या अंदरूनी इंद्रियों के माध्यम से हो रही है, शारीरिक इंद्रियों से नहीं हो रही या भौतिक इंद्रियों से नहीं हो रही, वो मानसिक रचनाएं। मूलभूत रूप से सभी नाद रचनाएं हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनकी अनुभूति किस माध्यम से हो रही है।
आप सुन रहे थे बोधि वार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।